फिर ये देखिए कि एक छोटी सी चीज़ नज़र से रह गई थी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यहाँ अहमद लफ्ज़ से मुराद है नजाशी का वाक़या। हम पीछे पढ़ चुके हैं सातवें पारे के शुरू में कि जब नजाशी के पास लोग गए थे तो नबी सल्लम की सिम्टम्स बताई थी ना, वाक़या दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो उसने उस वक़्त जो बात कही थी वो पढ़ के सुनाती हूँ, और वो तो नबी सल्लम के बिल्कुल करीब के दौर की बात थी ना, वो आपको मिला हुआ नहीं था, उसने आपके बारे में सुना हुआ था, लेकिन उसने आपके बारे में क्या कहा? जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से नबी सल्लम की तालीमात सुनी तो इसने कहा, मरहबम बिकुम व बिमन जी तुम मिन इंदिही अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाही व अन्नहुल्लज़ी नजिदु फिल इंजीली व अन्नहुल्लज़ी बशर बिही ईसा इब्न मरियम। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। मरहबा तुमको और उस हस्ती को जिसके पास से तुम आए हो, मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के रसूल हैं, और वही हैं जिनका जिक्र हम इंजील में पाते हैं, और वही हैं जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। नजाशी को किसने ये बताया? इंजील का आलिम था वो, उसको ये बातें पता लगती थी। अब आगे अल्लाह ताला हमें एक तिजारत की बात करते हैं। हम बाद में अगर मुमकिन हुआ तो ये हुवल्लज़ी अरसला वाली हदीस को एंड पे लेंगे, क्योंकि आखिरी आयतों का खुलासा इस वक्त हमें इस आयत को समझने में मददगार होगा। देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं आगाह करूं तुमको एक ऐसी तिजारत पर। अदुल्लु का लफ्ज़ दलालत के मानों में उर्दू में पढ़ते हैं। दलाल कौन होता है? जो किसी को मजबूर करता है या मायल करता है कि ये चीज़ ख़रीद लो, किसी को बीच में लाने वाला शख्स। क्या मैं तुमको बताऊं क्या एक ऐसी तिजारत, क्या है वो? तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुमको दर्दनाक अज़ाब से पना दे दे। चाहते हैं पहला बेनिफिट, एक बिज़नेस डील आपके सामने आती है और जिसमें बताया जा रहा है कि तुम चाहते हो ये सारे काम करना, नंबर एक अजाब अलीम से निजात। हम में से कोई चाहता है? कोई है ऐसा कि जो ना चाहे? तो करना क्या पड़ेगा? पहली बात, तूमिनून बिल्लाह, वो तिजारत ये है कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, और व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करो अल्लाह की राह में। कैसे? बी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों से और अपनी जानों से। मुश्किल है ना? होगा क्या ये सुन लो तो आसान लगेगा। नंबर एक, ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, यही तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो, हकीकते हाल से आगाह हो। पहली बात है, ऊपर हमने पढ़ी, तुंजी को मिन अज़ाबिन अलीम, इस डील से मिलेगा क्या? बिल्कुल, एक ऑफ़र है आपके सामने। पहली चीज़, अज़ाब अलीम से पना। दूसरी चीज़, यह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। अब तीसरी चीज़, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को। जहन में लाइए सर अपने सारे गुनाहों को, जिनको जानते हैं और जिनको नहीं जानते। अल्लाह सारे गुनाह ही माफ़ कर दे, इतना ही बड़ा है। लेकिन अगला बेनिफिट, व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और दाखिल करेगा तुमको ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें रवां हैं, और व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन, और पाकीज़ा मकानों में जो सदा बहार बागों में हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। बस इतना कुछ ही मिलेगा? नहीं। व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और भी चीज़ है जो तुम्हें बड़ी पसंद है, वो क्या है? नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, के अल्लाह की तरफ से नुसरत और फतह जो बहुत करीब है। मुराद है दुनिया की तरक्की, और इस डील पे साइन करने वालों को वबशिरिल मुमिनीन, खुशखबरियाँ दे दीजिए ईमान लाने वालों को। यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को झंझोड़ा है। तिजारत का लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है कि जिस पे इंसान के सारे हवास काम करने लग जाते हैं। माल, वक्त, मेहनत, जहानत, काबिलियत इंसान इसलिए खपाता है कि उससे नफ़ा हासिल हो। अल्लाह ताला ने इसी रियायत से यहाँ ईमान और जिहाद फी सबीलिल्लाह को तिजारत कहा। کہا کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ کھپا دو گے تو بھی فائدہ تمہارا ہے کہ نفع وہ ہوگا جو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اتنا کچھ ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ دیکھیے دنیا میں لوگ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ کاروبار میں لگائیں اور ملے۔ کسی کو کاروبار میں پیسہ لگاتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا، بھلا کیوں؟ کیونکہ فائدہ ہی ہے نا، زیادہ لگائیں گے تو ملنا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں چلا گیا۔ کاروبار میں آپ 10 لاکھ لگاتے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت آئے گا، اب اور بھی لگا دو۔ جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے وہ اللہ سے تجارت کر کے اپنے نفع کو سارا بھی لگا دے گا تو بھی بڑی بات نہیں، اور کرے گا کیا؟ اللہ کے لیے سب کچھ لگا کر اللہ سے ہی اس کا اجر لے گا۔ کتنے بینیفٹ اللہ نے اس میں دیے، ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس پہ خود کو دیکھے۔ کوئی بزنس ڈیل آپ کی زندگی میں کبھی آئی ہو، اگر آپ کا کاروبار سے تعلق ہو، کوئی آفر آ جاتی ہے، کوئی گھر سیل پہ آ جاتا ہے، کوئی چیز مہنگی تھی سستی ہو گئی، بائی ون گیٹ ون فری، آؤٹ آف سیزن سیل، موسم بدل گیا سیل لگ گئی، کتنے لوگ بھاگتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ ایک لے ایک فری۔ اللہ نے یہاں 7 قسم کی چیزیں بتا دی کہ کوشش کرو، پر یہ ہوگا کیسے؟ اس کو اب اگلے حصے میں کہا گیا حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے ناطے سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کام ہماری مدد کا محتاج ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ اس کی برکتوں کو خود اپنی زندگی میں پاتے ہیں، وہ اپنا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کا بھلا بھی کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہوئے اس کو انصار اللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کی ذرہ نوازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ اخلاص کی قدر کرتا ہے کہ ان کو انصار اللہ کا لقب دیتا ہے، اپنی فرم کا بیج دیتا ہے کہ تم انصار اللہ کا ٹائٹل لگا لو، ورنہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کو اس کے فائدے دنیا میں دکھا دے گا۔ اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت میں کبھی نقصان نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ کی ہوئی کوششوں میں گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، جنت میں داخلے کا وعدہ ہے، جہنم سے نجات کا وعدہ ہے، اور دنیا کی کامیابیاں، دنیا میں بھی مدد ملے گی، فتح قریب میں فتح مکہ بھی ہے، اور آج کے دور میں دنیا میں دین کا غلبہ بھی ہے۔ فتح قریب کہہ کر یہ بتا دیا کہ لوگوں اللہ کی مدد قریب ہے، صرف تمہاری کوشش کی دیر ہے، تھوڑی سی کوشش کرو گے اللہ وہ سب کچھ دے دے گا جو چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ تو میں نونا باللہ، ایمان لے آؤ۔ سورۃ آل عمران آیت 139 میں بھی کہا، وان تم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا پھر ہی بات ہوگی۔ اب دیکھیں ایمان لانے والوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو مانی کیا نکلتا ہے؟ ایمان کے تقاضے پورے کرو، مخلص مومن بنو، منافق مومن نہ بنو، دعوے نہ کرو، دعویٰ کرو۔ ایمان محض زبانی دعوے کا نام نہیں، کوشش کا نام ہے، اور وہ تجارت جو دنیا کی ہر تجارت سے اچھی۔ تنجیکم من عذاب علیم، کرنا کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اطمینان قلب ملے گا، بیماریوں میں راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ ساری دنیا ڈپریشن میں ہوگی، تمہارے دل خوشیوں میں اچھل رہے ہوں گے۔ ساری دنیا جنگ کے خطروں میں ہوگی، تم اللہ کی ذات کے لیے مر مٹنے کی کوشش کرو گے۔ کیسے؟ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح کے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے راستے کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ دعوت تو سب کے لیے تھی، قبول کتنوں نے کی؟ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے۔ لبیک کہا، انہوں نے فوراً فارم فل کر دیے، والنٹیئر فارمز، کہ اللہ ہم تیار ہیں۔ لیکن وکفرت طائفة، ایک دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، سوری وی آر ناٹ اویلیبل، अभी सीरियस नहीं, अभी हालात नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को एक साइड पे करके माजरत कर ली, सिर्फ खुश होते रहे दूर खड़े होके कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अल्लाह ने क्या किया, फ़ैयतनल्लसीना आमनू अला अदुविहिम, फिर हमने मदद की जो ईमान लाए। देखिएगा पीछे क्या कहा, कूनू अंसारुल्लाह, और अब कहा जा रहा है तुमने क्या करना है, हमने मदद करनी है तुम्हारी। किस शर्त पे? ईमान की। किसके मुकाबले में? अदुविहिम, इनके दुश्मनों के मुकाबले में। हुआ क्या? फसबहू जाहिरीन, बिलाखिर वही गालिब रहे। अल्लाह ताला इस सूरत का बुनियादी नुक्ता हमें आखिरी आयत में समझा रहे हैं कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करने वाले खुद ही इसकी खैर पाते हैं, खुद ही इनको खुशियाँ मिलती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी लगती है कि ये अपनी मौत सिर्फ इसलिए टालना चाहते हैं कि अल्लाह कुछ हिस्सा तो डाल दें। अभी क्या किया हमने? अभी तो कोई काम भी ढंग का नहीं हुआ, अभी दुनिया से चली जाऊंगी, अभी चली जाऊं। ये है वो चीज़ जिसकी हिरस को इंसान कर सकता है। याद रखिए कि अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है। ये बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी पहले से बहुत अच्छी चल रही है, उसको किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो देखती है कि कारोबार बहुत अच्छा है और हमारा तरीका बहुत अच्छा है, तो कहती है चलो दूसरों के भी शेयर्स लेते हैं। आज अगर हम 100 गाड़ियाँ बनाते हैं, हम 1,000 बना लेंगे, 10 लोगों के और पैसे डाल लेते हैं। फर्म बड़ी होती जाती है, होती जाती है, और उसके बाद फिर एक इंसान बहुत आगे चला जाता है। अल्लाह ताला को इंसानों को फ़ायदा देना है। लिखिए, अल्लाह जब भी हमें अपना मददगार बनने की दावत देता है ना, तो बड़ा बड़ा करके लिख लें कि वो हमारी मदद करने के लिए ऐसा चाहता है। जैसे कोई कंपनी आपके शेयर्स मांगती है तो वो आपको फ़ायदा देना चाहती है। देखिए लोगों के पास पैसे पड़े होते हैं ना, तो वो कहते हैं लाओ कहीं इन्वेस्ट कर दें, किसी के चलते कारोबार में डाल देते हैं, मेरा भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो उसकी मदद नहीं कर रहे होते, उसको नहीं ज़रूरत। वो कहते हैं कि हमारा पैसा लगेगा तो हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कूनू अंसारुल्लाह। सवाल पैदा होता है कैसे, अल्लाह के मददगार बनने से क्या मुराद है? पहली बात, इसके दीन के गलबे की कोशिशों में अपना हिस्सा डालना। दीन के गलबे के लिए आगाज़ में जो इल्मी कोशिशें की जाती हैं, इसमें माली और जानी खिदमात पेश करना। दीन के गलबे के लिए कुरान मजीद का इल्म हासिल करके इसे दूसरों तक पहुंचाना, और दीन की दावत और तबलीग के कामों में मुआविन और मददगार बनना, और जहां ज़रूरत पड़े वहां दीन के गलबे के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए अपनी जानों और मालों को पेश करना। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का मददगार बनने के लिए इंसान को करना क्या पड़ता है? क्योंकि इतनी बातें हमने सुनी तो सवाल पैदा होता है कि करना क्या, कैसे बने? मेरा नहीं ख्याल कि सुनने वालों में कोई एक भी ये कहे कि मुझे नहीं बनना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं। कोई सोचता उसको नहीं बनना, खुद ही हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि कोई अपना नुकसान नहीं कर सकता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं पैसा लगाना कारोबार में। सवाल पैदा होता है फिर करें क्या? तो लिखिए, पहली बात है कि अल्लाह का मददगार बनने के लिए इंसान को इस मदद की हकीकत और ज़रूरत को समझना पड़ता है। जब तक हम हकीकत नहीं समझते और ज़रूरत नहीं समझते, हम कभी मददगार नहीं बनते। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए दीन के रस्तों में मददगार नहीं होते कि उनको पता ही नहीं होता कि इसकी ज़रूरत कितनी है। दूसरी चीज़, मददगार बनने के लिए इरादा करना पड़ता है। कुछ पहली सीढ़ी से फिसल जाते हैं, कुछ दूसरी से। तीसरी बात है कि मददगार बनने के लिए वक्त लगाना पड़ता है। फिर नंबर आप खुद डालते जाएं। अगली बात, मददगार बनने के लिए माल लगाना पड़ता है। मददगार बनने के लिए दूसरों को भी मददगार बनाना पड़ता है। मददगार बनने के लिए लोगों को एक मरकज़ के गिर्द इकट्ठा करना पड़ता है, यूनाइट करना पड़ता है। और मददगार बनने के लिए हवारियों की तरह आगे बढ़कर अल्लाह ताला की मदद के लिए खुद को पेश करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि मददगार बनने के लिए अपना आप रब के हवाले करना पड़ता है। ये कहना पड़ता है कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। और मददगार बनने के लिए हर दम पेश पेश रहना पड़ता है, जान बचाने वाले नहीं, जान देने वाले। कुछ जान देने वाले होते हैं, कुछ जान बचाने वाले बनते हैं। दावत कैसे दी जाएगी? जैसे अल्लाह के नबियों ने दी। हज़रत ईसा ने कहा कूनू अंसारुल्ला, मत लोगों से कहिए कि मुझसे जुड़ो, लोगों से कहिए अंसारुल्ला बन जाओ। हज़रत ईसा ने बुलाया तो नतीजा क्या हुआ? फा मनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, एक जमात ईमान लाई, ये कुफर की करेगी। हमें क्या पता चला, जब भी दीन की कॉल आएगी सारे नहीं मानेंगे। कभी कभी इंसान सोचता है ना, ये कैसे हो सकता है। फा मनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, कुछ लब्बई कहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करने वाले भी होते हैं। वकफ़रत ताइफ़तुम, ये फितरी बात है, जितनी भी आप कोशिश कर लें ये फितरी बात है। दिल नहीं हरे होते, दिल से माल की मोहब्बत नहीं जाती। सहाबा करम में भी ऐसे लोग थे, सारा दीन था, माल की मोहब्बत नहीं दिल से गई आखिरी वक्त तक। नाम नहीं लेने की ज़रूरत इसलिए कि ऐसे लगता है कि गीबत होगी, हालांकि हकीकत थी। कुछ के दिलों में आखिर वक्त तक था, मजबूरियों वाले दूर थे, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन कुछ ना कुछ अगर आमनत होते हैं तो कुछ ना कुछ कफरत भी होते हैं। हम अपना मुहासबा कैसे करें, अपना जायज़ा लेकर, कि क्या अल्लाह के रास्ते में जब भी दीन की कोई ज़रूरत पेश आती है, जान माल की, माल बाद में, पहले जान है। लोग कहते हैं माल जमा कर देते हैं, क्या करना है माल, हमने हमें तो आप चाहिए, आपकी एफर्ट चाहिए, आपकी कोशिश चाहिए। तुंजी को मिन अज़ाब अलीम, इस पर एक दर्स है, मैंने इस पर डिटेल आपको इसलिए भी नहीं दी, आयत 10 से लेके 12, इन दो आयतों पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है जिसमें इसी आयत को बेस बनाकर बहुत डिटेल से बात हुई थी। तो अल्लाह से दुआ करें कि हम ऐसी तिजारत करने वाले बने। एक बात हम और करेंगे आयत 10 में, हल दुल्लु को मला तिजारत इन पे। जो ही लफ्ज़ तिजारत आता है तो दुनिया के नाते से एक फिक्र लग जाती है कि पता नहीं नफ़ा होगा कि नुकसान, या तो सारा लगेगा और बच जाएगा और भड़ जाएगा और यह डूबेगा। यहाँ इस गलती में ना रहिएगा कि शायद अल्लाह ताला के रास्ते की जो तिजारत है इसमें नफ़े के साथ नुकसान भी होता है। इसमें कभी नुकसान नहीं होता, जो डूब गए तो भी, जो हारे तो भी हार नहीं। कहते हैं ना वो एक शेर है, इश्क लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस शेर में आता है कि इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो इसमें, जो हारे तो भी हारे नहीं। असल बात क्या है कि अल्लाह के रास्ते की तिजारत में कभी नुकसान नहीं होता। दुनिया में आप किसी को कहते हैं ये $10,000 लगा दो मेरे, लेकिन शर्त ये कि इस कारोबार में नुकसान ना हो, जब चाहूँ 10,000 वापस भी ले लूँ और हर महीने फिक्स्ड या इस पे बढ़ा के दो, ये सूद है। ऐसे आप नहीं कर सकते, पैसा दें उस पे नफ़ा खाएं एंड पे पैसा भी ले लें, ये सूद बनेगा। अल्लाह के रास्ते में पूरा देकर पहले से आप कह सकते हैं कि इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता। अल्लाह के रास्ते में देने वाले कभी नुकसान पे नहीं होते। असल बात यह कि आप दीन का काम देखें, ज़िंदगी में हमेशा जहाँ दीन के नाम पे लगाएं ये देखें कि इससे खैर कितनी आएगी। फिर इसके बाद आखिरी आयतें हैं जिसमें अंसारुल्लाह का लफ्ज़ है और हवारी है। लफ्ज़ हवारी पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ सामने आई, वो आपसे शेयर करूँगी। लफ्ज़ पीछे गुजर चुके अल्हम्दुलिल्लाह। हवारियून, हवारी की जमा है, हौर से है, सफ़ेदी को कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो इब्तदाई शागिर्द थे उनका ये लक़ब है, और ये धोबी थे, कपड़े धोते थे, इसलिए इनको हवारी का। इसी से फिर पुरखलूस दोस्त और बावफा साथी को हवारी कहते हैं। आप उर्दू में कहते हैं ना साफ दिल के लोग, बिल्कुल वही लफ्ज़ इधर है। इसी तरह आटे को छान कर भूसी निकाल दी गई हो उसको भी हवारी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं भला, मैदा। मैदे को भी हवारी कहते हैं, यानी इसमें से सब दूसरी चीज़ें निकलती हैं। हर वो शख्स जो किसी की मदद करने में मुबालगा करे वो उसका हवारी है। ये नहीं कि बचा खुचा, ये नहीं कि जो थोड़ा बहुत कद को लंबा करने वाली कोशिशें जो होती हैं ना, वो इंसान को अल्लाह के रास्ते में हवारी बनाती हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने इस काम के लिए चुन ले। और अल्लाह का वादा तो है ही, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, याद है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हम से इस गलबे के रास्ते में छोटा सा काम करा ले। एक छोटी सी बात याद आ गई कि तफसीरी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जब नमरूद ने आग जलाई थी तो लोग तो उसमें हिस्सा डाल रहे थे ना कि आग में ईंधन डालें, इतने भी अहमक लोग थे उस दौर में कि मन्नत मानती औरतें कि अच्छा ये बच्चा दे दे तो मैं इब्राहिम के खिलाफ जो आग जलाई जाएगी उसमें लकड़ियाँ डालूंगी। इतना भी इंसान बदबख्त होता है। उतने में एक छोटी सी चिड़िया थी, वो किसी दरिया पे गई और छूछ में पानी के दो कतरे ले आई। किधर जा रही हो? कहने लगी आग बुझाने जा रही इब्राहिम की। उसने कहा इस दो कतरों से ये आग बुझेगी? कहने लगी मुझे क्या, कल क्यामत के दिन कह दूंगी अल्लाह मेरी चोंच ही इतनी थी, मैंने चोंच से डाल के गई, मुझे क्या बुझे ना बुझे। तो ये इस वक्त हमारी बात है, हो इस्लाम गालिब ना हो अल्लाह ने कर लेना इंशाल्लाह। हम तो अपनी चोंच भर कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह हमारी चोंच भी बड़ी कर दे और जो चोंच में पहले वो निकाल दें ताकि अल्लाह ताला और हमारी सलाहियतें बनाए। यकीन करें गंदा खून निकलता है तो जिस्म साफ खून बनाता है, ये भी एक मेडिकल की इस्तेलाह है। बाज़ बीमारियाँ सिर्फ गंदे खून को निकालने से ठीक हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा एक्सेसिव चीज़ें, दिल में माल की चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल में निफाक का रोग डालती हैं। जितना निफाक इन्फाक करते जाते हैं ना उतना निफाक भी साथ न चढ़ता है। और अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।